चर्चक आप सबको नमस्ते। कल मतलब टुमारो आने वाला कल शिवरात्रि है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या को सेलिब्रेट करते हैं और कल जो यस्टरडे जो बीता वो महर्षि दयानंद जी का जन्मदिन था, जो कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी तिथि में पड़ता है। अंग्रेजी डेट में तो फरवरी 12 था, पर भारतीय तिथि में फाल्गुन कृष्ण दशमी जो इस साल 26 फरवरी मतलब कल था। और शिवरात्रि के साथ भी स्वामी जी का एक कनेक्शन है। दैट्स हाउ ये जो दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते आर्य समाज के लिए। तो पहले शिवरात्रि पर थोड़ा सा समझते हैं। शिव मतलब मंगल होता है, कल्याण, मंगल, भला, वेलबींग। रात्रि तो रात है। शिवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? लोग रात भर जागते हैं। जब सोसाइटी धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ से रिचुअलिस्टिक लाइफ में आ जाता है, फिर उसकी जो सेंस है वो कहीं छुप जाता है, उसकी जगह रिचुअल स्थान ले लेते हैं। अब जागने की रात्रि के नाम पर हम रात भर जागते हैं, जैसे उपवास के नाम पर हम खाना छोड़ते हैं, पर इसके जो स्पिरिचुअल सेंस था वो कहीं हम भूल गए। तो शिवरात्रि भी, जिसका दूसरा नाम जागर है, जागर मतलब जागरण, अवेकनिंग, जगे रहना, रात भर लोग जगे रहते हैं शिव की उपासना में, शिव मंगलमय परमात्मा की उपासना में। और शिव तभी आप बनते हैं, या कोई भी व्यक्ति कोई भी थिंग तभी शिव मंगलमय बनता है, एब्सोल्यूट शिव, जब वो ट्रांसेंडेंट होता है, जब आप इस मुंडन जो डे टू डे लाइफ सांसारिक चीजों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं। वो परमात्मा को शिव कहा, प्रभु को शिव कहा, जो मंगलमय है, जो ट्रांसेंडेंट है, सबसे ऊपर है, जो हमारे सेंसेस की जो एबिलिटी है उससे परे है, जो कभी चेंज नहीं होता, अनचेंजेबल, अपरिणामी है, और जिसका कोई रूप रंग रस नहीं है, जो फॉर्मलेस है। और वो कौन है? वो है परम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जिस नाम से भी आप इसे बोलो। और उसी परमात्मा को हम महादेव बोलते हैं। देव संसार में कोई भी वस्तु जिसका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है वो देवता है। वो पेड़ हो, पौधा हो, पानी हो, नदी हो, नाले हो, समुंदर हो, सूरज हो, चांद हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, माँ हो, बाप हो, टीचर्स हो, बड़े लोग हो, जो भी जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे लिए देवता होते हैं। इवन जानवरों में गाय है, बकरी, ये सब हमारे लिए देवता होते हैं, क्योंकि जिनका भी जो जो कुछ देते हैं हमारे लाइफ में उन्हीं को हम देवता कहते हैं। अब परमात्मा को महादेव कहते हैं क्योंकि देवताओं का देव है। जो हमारे लिए कुछ देते हैं वो इनर्ट हो, कोई जड़ या सूरज, चांद, पहाड़, पर्वत जैसा हो, उनको भी परमात्मा ही बनाता है, प्रकाशित करता है, और हमें भी परमात्मा करता है, इसीलिए उसे महादेव कहते हैं, शिव को।
यहाँ पे नहीं आ रही।
और वेदों में उस परमात्मा के जो अलग अलग नाम आते हैं, जो आगे जाकर पौराणिक लिटरेचर में हम शिव जो पौराणिक कैरेक्टर है, जिस जो पार्वती के पति, गणेश और कार्तिक के पिता, उनके साथ हम जोड़ने लगे, पर वैदिक वेदों में, वैदिक साहित्य में तो शिव परमात्मा वो रुद्र है, क्योंकि वो रुलाने वाला है। परमात्मा के तीन मुख्यतः काम है, संसार को पैदा करना, सृष्टि करना, और उसको टेक केयर करना। अब जब समय आए तो उसका विनाश करना, डिस्ट्रक्शन। तो जब वो पैदा करता है तो उसका नाम ब्रह्म होता है, जब जो टेक केयर करता है वो शांत रहता है, वो शिव होता है, और जब वो विनाश करता है किसी को अच्छा तो लगता नहीं, रुद्र होता है। रुद्र का अर्थ क्या है? रोदयति इति रुद्र, मतलब जो रुलाता है। वैसे तो आत्मा को भी रुद्र कहते हैं, परमात्मा को भी रुद्र कहते हैं। आत्मा को इसीलिए कहते हैं जब आत्मा आपके शरीर से निकल के जाए, मतलब जब हम मरे तो हर कोई रोता है, मरने वाला भी रोता है, सबको ही रोता है। रुद्र का लिटरेरी मीनिंग होता है रुलाने वाला। अब कोई आपको रुलाता कब है? जब आपको कष्ट होता है, जो चीजें आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हो। परमात्मा भी रुद्र है क्योंकि जहाँ जरूरत पड़ती है वो विनाश करता है, और विनाश जो लोग हैं उनको पसंद नहीं है। वो शिव है, वो शिव का अर्थ मंगलमय है। देखिए दोनों कॉन्ट्रेडिक्शन है, वो मंगलमय भी है और रुलाने वाला भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ बाप बच्चों के लिए रुद्र भी होते हैं, शिव भी होते हैं।
डाउनलोड हुआ या तो मीडिया डाउनलोड नहीं हुआ।
बच्चों को जब आप डिसिप्लिन में रखते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं, हमारे माँ बाप बड़े खड़ोश
हैं। आप ये डाउनलोडेड ऑन दिस लैपटॉप,
पर उनकी भाव अंदर तो सीवी है, कल्याण है,
तो आप
कि हमारे बच्चों का भला हो।
इंडिविजुअल बेच
अच्छा चाहता है मैं 12 घंटे टीवी देखूं, 15 घंटे गेम खेलूं। माँ बाप
उसी फोल्डर में डाल दूंगे।
जो रुलाने का जो रूप है माँ बाप का, वो रुद्र रूप है। और शिव रूप अंदर तो 24 घंटे शिव है। कभी कभी बच्चों को लगता है जब माँ बाप बात मान जाते हैं
वो शिव रूप है।
इसी तरह संसार में हम परमात्मा को भी उसी एंगल से हमेशा देखते हैं। जब कुछ फायदा हो जाए तो वो अच्छा है, जब फायदा ना हो जाए तो बुरा है, तो रुद्र बन
जाता।
तो मॉडर्न हिंदुइज्म में उससे भी हम बियॉन्ड चले गए। कुछ मैसेज ओके तो हमारे जो मॉडर्न हिंदू लोग तो और भी चले गए हैं। अब उनको शिव रुद्र से भी फर्क नहीं पड़ता, अब तो सीधा वो भगवान बदल डालते हैं।
अच्छा,
दो चार पांच साल पूजा की नहीं चली, चलो अब ये संतोषी माँ से चली नहीं, ये साई बाबा आ गए, ये सुनेंगे वहां। अब जी मैं साई बाबा का भक्त हूँ, तो वहां कुछ इच्छाएं पूरी हो गई नहीं हो गई, चलो किसी ने बोला वो माता है वैष्णो देवी, वहां सब काम बन जाएगा। चलो जी भगवान बदल गए, अब मैं वैष्णो देवी की भक्त बन गया। तो हिंदू लोग तो कपड़े कम बदलते हैं, भगवान ज्यादा बदलते हैं, और वो भी स्वार्थ के कारण। ध्यान रखिए, किसी ने बताया नहीं भगवान क्या होता है। सिर्फ बीवी बच्चे पालने, पैसे कमाने के लिए, फायदा करने के लिए भगवान हम ढूंढते, बाकी समय तो। इसीलिए हम रोज रोज नए नए भगवान भी संसार में पैदा हो जाते हैं, और जब भगवानों से मन नहीं भरा, मतलब देखा काम नहीं बन रहा है, तो इंसानों को भी हम भगवान बनाने लग गए। ये गुरु भगवान है, ये गुरु भगवान है। अब देखो गली गली में आपको इंसान भगवान मिल जाते हैं इंडिया भारत में, तो वो खैर अलग बात है, क्योंकि अब रुद्र रूप देखना तो पसंद नहीं, क्या सुनना भी पसंद नहीं है। पर ये रियलिटी है, ये परमात्मा शिव भी है और वो रुद्र भी है। और दूसरा जो परमात्मा का रूप है वो शंकर है, जो सबका शम कहते हैं, अच्छा भला, जो सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है। इसीलिए उस परमात्मा को ही रुद्र कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को शंकर कहते हैं। और वो भूतनाथ है, भूत जो कुछ भी पैदा हुआ है, एनीथिंग व्हिच इज बर्न और क्रिएटेड और मेड, वो सब भूत हैं। पर आजकल हम मॉडर्न हिंदू लोग कुछ और भूत मानते हैं, वो जो अब्राहमिक कल्चर में जो घोस्ट स्पिरिट का कंसेप्ट है। कोई आएगा तो प्लीज ये मैसेज चेक करिए, क्या बार बार मैसेज आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, कोई जूम में कुछ मैसेज आ रहा है बार बार। तो वो भूतनाथ है, भूत का अर्थ होता है प्राणी। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब भूत हैं, जो भी पैदा हुआ है वो भूत है। जैसे ईशोपनिषद में पढ़ते हैं ना, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सभी प्राणियों में खुद को देखता है, खुद में सभी प्राणियों को देखता है, तो वहां भूत मतलब घोष्ट नहीं, जो रात को जो उन लोगों को डराता है जो डरना चाहते हैं भूत प्रेत से, ऐसा नहीं। तो परमात्मा भूतनाथ मतलब वो ये घोस्ट स्पिरिट जो आजकल देखते हैं, वो शिव जी महाराज चलते हैं और ये सब हड्डी वाले जो स्केलेटन उनके साथ चलते हैं, है ना। नहीं, भूत मतलब क्रिएचर, जो कुछ भी पैदा हुआ है, समस्त प्राणियों का वो स्वामी परमात्मा परमेश्वर शिव, जिसकी उपासना करने के लिए हम शिवरात्रि का दिन चुनते हैं। और शिवरात्रि आप कब सेलिब्रेट करते हो? अमावस्या के दिन। अमावस्या समझते हैं, जो सबसे डार्केस्ट नाइट होता है मंथ का, महीने का जो सबसे ज्यादा घना अंधेरा होता है, जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं होता है, उसी को अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के डार्क नाइट में हम मनाते कब हैं? रात को सेलिब्रेट करते हैं। और क्या करते हैं? उपवास करके करते हैं। तो शिवरात्रि रात्रि की अंधेरे का सेलिब्रेशन है, क्योंकि जब भी ये जो संसार सृष्टि होती है, सृष्टि से पहले भी वो अंधेरे से ही प्रकाश हुआ। ना सदा सिन्नो सदा सित तदानिम ना सित रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी व कुहकस्य शर्मन् नम्भः किमासित गहनम गभीरम। इस क्रिएशन से पहले जब द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, जब प्रलय की अवस्था थी, तो क्या था? ना ये सोलर सिस्टम थे, ना स्टार्स थे, ना प्लैनेट्स थे, ना हम थे, ना आप थे, जब कोई था ही नहीं, तो क्या था? जो एक रियलिटी है, वो रियलिटी है कि डार्कनेस ही थी, अंधेरा ही अंधेरा था। प्रकाश तो बनाया जाता है, अंधेरा बाय डिफॉल्ट होता है। प्रकाश होता है जब तारे नक्षत्र होते हैं, जब सूरज होता है, और जब ये सब नहीं होते हैं, तो जो नेचर है वो तो अंधेरा है। अंधेरे में से हमें रास्ता ढूंढना पड़ता है, और अंधेरा ही जो होता है वो बाउंडलेस होता है, वही लिमिटलेस होता है। प्रकाश अब दिया जलाते हैं, एक छोटे से जब सूरज नहीं होता है तो आप रोशनी जलाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को रोशन करता है, उससे बेअंत सब अगेन अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो हमारे लाइफ में और ये यूनिवर्स का ये पार्ट है, सब जगह अंधेरा है। तो वी नीड टू एक्सेप्ट, हमें ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि संसार में अंधेरा का भी अपना एग्जिस्टेंस है, और उसको सेलिब्रेट करना। और शिवरात्रि की सेलिब्रेशन क्या है? इसी मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, आध्यात्मिक उपासना की, जिसमें हम अपने उस लिमिटेडनेस को, जो सीमा हमारे अंदर है, उस सीमा को तोड़ना, इस शरीर की जो लिमिटेशन है, माइंड की जो लिमिटेशन है, इंटेलेक्ट की जो लिमिटेशन है, उससे बियॉन्ड जा करके अपने आप को एक्सपीरियंस करना। उस अंधेरे के बीच में से उत्पत्ति जैसे होती है, संसार बनता है, तो उस संसार बने हुए संसार की ओर बढ़ना। इवन हम भी जब पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले वो कॉस्मोस वाले स्थिति में ही तो होते हैं, माँ के पेट में अंधेरे में ही तो होते हैं, और धीरे 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 प्रकाश की ओर आने की कोशिश करते हैं। वो जो स्ट्रगल है वो नेचुरल है, हमारे द्वारा हम चाह कर नहीं करते, हमें उससे गुजरना पड़ता है। पर आपको उस अंधेरे से ही गुजरना पड़ता है, माँ के पेट से बाहर आकर के सूरज की रोशनी या संसार को देखने के लिए। तो इसी तरह बॉडी और माइंड के कारण हमारा आत्मा, जो मोस्ट ऑफ टाइम इग्नोरेंस में रहता है, सांसारिक चीजों में, वो वेल्थ हो, धन हो, नाम हो, फेम हो, अप्रिसिएशन हो, इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो, इनके चक्कर में जब हम जो रियलिटी को इग्नोर करते हैं, हमारे रियल फॉर्म को, उस अंधेरे से बाहर आने के लिए जिनमें छटपटाहट होती है, जिनमें व्याकुलता होती है, वो जो कोशिश करते हैं, इसी को आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, और शिवरात्रि उसी की सेलिब्रेशन होता है। और उसके लिए जरूरी क्या है? वेद में बड़ा खूबसूरत मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतम सामानियन्ते, यो जागारतम अयम सोम आह तवाहमस्मि सख्यन्योकाः। जो जागता है ऋग्वेद उसी को चाहते हैं, ऋचाएं उसी को चाहते हैं, जो जागता है साम उसी के पास जाते हैं, जो जागता है ये सोमरस उसी को बोलता है कि मैं तुम्हारा हूं तुम मुझे स्वीकार कर ले। जागना जो जगा हुआ है मतलब जो वेकिंग स्टेट में है, कहते ना सोए हुए बेटे का हिस्सा नहीं होता है। तो आपकी मेटेरियल लाइफ में भी डे टू डे लाइफ में भी यही होता है, जो आलसी होता है पड़ा रहता है काम नहीं करता दुनिया के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करता तो पीछे रह जाता है। कितना पढ़ा लिखा हो कितना टैलेंटेड हो किसी काम में नहीं आता है ना। आप जब अपने आप को अपडेट करते हैं, जब आप जगे हुए होते हैं, परिस्थिति आसपास इकोसिस्टम क्या है समझते हैं, उसके साथ अपने आप को ढालते रहते हैं तो आप सर्वाइव भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो कितना भी टैलेंट ईश्वर ने उसको दिया हो, वो कितना भी ज्ञानी हो पढ़ा लिखा हो ट्रेंड हो स्किल्ड हो, अगर वो पड़ा रहे एफर्ट्स ना करे, ये एफर्ट्स करना ही जगने का जागरूक होने का निशानी है, तो वो पीछे रह जाता है। तो जो जगा हुआ है, जो अपने बारे में जिसकी अवेयरनेस है मैं कौन हूं, शरीर का मेरे लाइफ में क्या रोल है, माइंड का क्या रोल है, इंटेलेक्ट का क्या रोल है, ब्रेन का क्या रोल है, ये यूनिवर्स क्या है कैसे फंक्शन करता है, मेरे जो इमोशंस कभी कभी अप होते हैं कभी कभी डाउन होते हैं क्यों होते हैं, क्या रिलेशनशिप है मेरा यूनिवर्स के साथ, दुनिया के साथ, दुनिया मतलब जिनके साथ भी, दुनिया के सबके साथ थोड़ी आपके रिलेशनशिप, हमारी आपकी दुनिया, हम जब कहते हैं दुनिया तो हमारे लिए दुनिया उतनी है जितना हमारा अपना सर्कल है, हमारी फैमिली हमारे फ्रेंड्स हमारे जॉब हमारा प्रोफेशन, हम जहां जाते हैं बस ये हमारे, हम जहां पैदा हुए जहां रहते हैं जिस कम्युनिटी में, यही सब मिला करके आपकी हमारी दुनिया होती है। हम जब अपने देश के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो देश थोड़ी है कि आप देश के कोने कोने के साथ आप आइडेंटिफाई करते हो, जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, जिस दुकान में जाते हो, जिस जहां एंटरटेन करते हो, जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, यही आपकी दुनिया है। दुनिया तो हमारी उतनी है जहां हमारा अपना एक्टिविटी चलती रहती है। तो जो जगा हुआ है जिसके अंदर वो अवेयरनेस है, उसी को ऋग्वेद, जब उसी के पास ऋग्वेद का मंत्र जाता है, किताब पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, जिसके अंदर किताब पढ़ने के बाद समझने की और उसको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है वही ज्ञानी बनता है। बाकी तो बुकवर्म बनते हैं, बुकवर्म समझते हैं किताबी कीड़ा, हमारे भारत में तो ये बड़े आसानी से गली गली में मिल जाएंगे, कुछ भी मिले रट के पढ़ लेना सब चीजें, इंजीनियरिंग भी रट के डॉक्टरी भी रट के है ना, आईएएस भी रट के बन जाते हैं रटा हुआ, क्योंकि बचपन से हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है, सिखाया क्या नहीं जाता है, उल्टा दबाया जाता है, क्वेश्चन पूछो तो चुप, माँ बाप को कुछ पूछो तो चुप, बाप से जवाब देते मुंह लड़ाता है। तो ये जो ट्रेडिशन हुआ उससे हुआ कि हम एजुकेटेड के नाम पर मोस्ट ऑफ लोग हमारे जो हुए वो सब बुकवर्म बने। जो बुकवर्म होता है वो लाखों किताबें रख ले पढ़ ले पर उसके लाइफ में ना वो कुछ काम में आता है, ना उसका स्किल डेवलप होता है, ना वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकता है, ना अपने लाइफ का ना दूसरे लाइफ का कभी कभी सॉल्यूशन निकाल सकता है। और अनपढ़ लोग आपको करोड़ों दुनिया में मिल जाएंगे जो फॉर्मली ट्रेंड नहीं है, फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है, पर अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों से ज्यादा समझदारी रखते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल इंडिया को देखें, ऐसे बहुत सारे जिन्होंने इतने प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं वो सब अनपढ़ थे, वो कबीरदास हो सूरदास हो, जो मिडिवल एज में जो काफी सारे संत कवि आए उनमें सबके सब अंगूठा छाप थे। पर जब आप कबीरदास की दोहे पढ़ते हैं तो बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअली लॉजिकली रैशनली थिंक सोचने वाले के सामने, मतलब उसके सामने फीका पड़ जाएगा कबीर के सामने, मतलब कबीर जैसा अनपढ़ व्यक्ति के सामने बड़े से बड़े सो कॉल्ड पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ लगेगा, उसकी लॉजिकल थिंकिंग और रैशनैलिटी पर। इसीलिए कबीरदास की अवेयरनेस ज्यादा है, अनपढ़ है फॉर्मली, पर उसके अंदर जो अवेकनिंग स्टेट है, जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, चीजों को देखने का, समझने की जो आउटलुक है, वो हमारे आपसे हजार गुना बेटर था। वैसे मैंने कबीरदास का एक नाम लिया क्योंकि मुझे एक दो की याद है, पर आपके अगल बगल में हजारों लाखों मिल जाएंगे। यो जागार, जो जगा हुआ होता है, शास्त्र भी उन्हीं को समझ में आते हैं। शास्त्र पढ़ने वाले तो करोड़ों होते हैं, पर शास्त्र तभी उन्हीं के अंदर डाइजेस्ट होता है जिनके अंदर अवेयरनेस हो। यो जागार तमु सामान्यंति, सामवेद उपासना का वेद है। उपासना मतलब अपने आप को डिवोट करने का, परमात्मा के सामने अपने आप को समर्पित करने का। समर्पण भी तभी आता है जब वो समर्पण सच्चा तभी होता है जब आपके अंदर वो अवेकनिंग अवस्था हो। अगर आप ब्लाइंडली, इग्नोरेंटली, है ना, वो किसी के शरण में जाते हैं, किसी को भक्ति करते हैं, उसको भक्ति नहीं कहते हैं, उसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं, ब्लाइंड बिलीफ कहते हैं। ये सच है कि जितने भी दुनिया में रिलीजियंस हैं उसमें 90% भक्ति नहीं है, वह ब्लाइंड बिलीव होता है। क्योंकि भक्ति के लिए, भक्ति और ब्लाइंड बिलीव में एक बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है, दोनों में सरेंडर तो चाहिए। भक्ति वो होती है जहां सरेंडर समझदारी के साथ, अवेयरनेस के साथ होता है, और ब्लाइंड बिलीव वहां होता है जब बिना कुछ जाने ये कौन है, मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, बिना जाने समझे बस करना है तो कर डालते हैं। तो फर्क यही होता है, जो भक्ति है वो परम तत्व को पाने का रास्ता उसके लिए खुल जाता है, जो ब्लाइंड बिलीवर है दिन दिन बदलते रहते हैं, कोसते रहते हैं। 50 साल तक सारी भजन कीर्तन तपस्या मंदिर जप तप पूजा पाठ करने के बाद भी अंदर उतनी ही बेईमानी भरी होती है, उतना बेचैनी उतनी ही भरी होती है, अंदर उतने ही परेशानियां भरी होती है, कुछ दूर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं ना। यो जागार तमयम सोमाह, और जो जगा हुआ होता है सोम उसके पास जाता है। सोम कौन है? तो एक वैदिक बड़ा सुंदर शब्द है, ये जो आनंद है ना, जो द स्टेट ऑफ ब्लिस, जब हम खुशी फील करते हैं, जब आनंद फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, जब आपके सामने कुछ भी नहीं हो तो भी आप खुश होते हैं। सुबह उठते हैं तो आप खुश फील करते हैं, बेड पर जाते हैं तो खुश होते हैं, कुछ भी करते हैं आप अंदर से बड़े खुश रहते हैं। मोस्ट ये जो खुशी की जो स्टेट है उसको सोम कहते हैं। सोम उन्हीं के पास जाकर बोलता है, किनके पास, जो जगे हुए हैं, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मुझे अपने पास रख लो। और हम क्या करते हैं, हम खुशी ढूंढने के लिए दरवाजे दरवाजे भटकते रहते हैं। पैसे से खुशी मिल जाए, अच्छे घर लेने से खुशी मिल जाए, ज्यादा दोस्त बनने से खुशी मिल जाए, जाम टकराए तो शायद खुशी मिल जाए, नहीं तो गंजा अफीम लेने से शायद खुशी मिल जाए, क्लब जाने से खुशी मिल जाए, मंदिर जाने से खुशी मिल जाए, कुछ बोले खुशी ढूंढते रहते हैं। और मिल भी जाता है, दो चार थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर बर्बाद होता है। रिस्पेक्ट मिल जाए तो खुशी मिल जाए, अप्रिसिएशन मिल जाए तो खुशी मिल जाए, ढूंढते रहते हैं, गली गली ढूंढते रहते हैं। मंत्र कहता है खुशी उसके पास खुद आती है, कहते मुझे अपने पास रख लो। और वो कह भी सकता है कि मुझे नहीं चाहिए भाग, फिर खुशी गिड़गिड़ाती है, नहीं मैं तो तुम्हारे अलावा और कहीं जाऊंगी नहीं। किसके पास आती है? यो जागार, जो जगा हुआ है। क्या भाव है? जो समझता है, जिसके अंदर ये अवेयरनेस हो गया है कि मैं कौन हूं, दुनिया क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इन सबके बीच में क्या कनेक्शन है, मेरे संसार में जो दुनियादारी है उसमें मेरी क्या रोल है, दूसरों का मेरे लाइफ में रोल है। जब आप हर चीज को ठीक ठीक अपने अंदर समझ लेते हैं, फिर आपको खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती है। देखिए, खुशी तो एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम तो पिछले आठ दस संडे से खुशियों पर ही ये आप इन कैसे खुश रहे हैं उस पर अलग अलग टॉपिक पर प्रवचन कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर सिंगल लाइन में बोले खुशी क्या है, इट्स आवर ओन स्टेट ऑफ माइंड। वो माइंड को कैसे बनाया जाए कि आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहो। तो गरीब भी तो खुश रहता है ना, अगर पैसे से खुशी मिलता तो गरीब सारे दुखी होते, पढ़ाई लिखाई से खुशी होती तो अनपढ़ सारे दुखी होते, फैमिली अच्छी हो तो खुशी होते, तो जिनके फैमिली नहीं हो दुखी मिलते। पर ऐसा थोड़े ही होता है, बीमार आदमी भी सुखी मिल जाएगा और बड़ा अच्छा खासा कुछ नहीं प्रॉब्लम है तो भी मुंह लटकाके हुए घूमते हुए मिल जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड है। तो जिसके अंदर वो जागरण पैदा हो गया, वो अवेयरनेस पैदा हो गया, वो किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीख जाएगा। खुशी छोड़ के जाएगी ही नहीं, वो कहेगी जाओ यहां से, वो नहीं जाना। इसका भाव है खुश रहने के लिए हमें अपने अंदर के अवेयरनेस पैदा करना होता है, न कि सिर्फ किसी के पीछे फॉलोअर बनना होता है। वो फॉलोअर हम किसी का भी बने, पैसे का बने, नाम का बने, फेम का बने, किसी का भी, ड्रग्स के बने, किसी के भी बने, किसी के फॉलोअर बनने से कोई कभी खुशी नहीं पाता। तो शिवरात्रि वही जो परम खुशी, जो 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 एब्सोल्यूट खुशी है, आनंद है, उसको पाने की जो साधना का एक सेलिब्रेशन है। ऐसा नहीं कि शिवरात्रि के दिन आप साधना में बैठ गए जी, मेडिटेशन किया और जो भी उपासना की, अगले दिन से आपकी साल भर की खुशी ट्रेजरी में आ गया, फिर अगले शिवरात्रि को ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। फेस्टिवल्स जो होते हैं वो एक किसी चीज को आपके सामने एक सिग्निफाई करते हैं, आपको एक रिमाइंडर कर होते हैं, वो आपके लिए एक अलार्म क्लॉक जैसे आप लगाते हैं ना घड़ी में कि उस समय आप जग उठते हैं। तो कोई भी फेस्टिवल होता है वो आपको जगाने का, आपके अंदर एक रिमाइंडर डालने का काम करता है। शिवरात्रि उस चीज का रिमाइंडर है कि लाइफ में कभी कभी अकेले में बैठो, 24 घंटे सब आसपास होना जरूरी नहीं है। आसपास का मतलब लोग नहीं, आजकल तो कोई चाहता ही नहीं कि लोग आसपास रहे, सब चाहते हैं सोशल मीडिया पास हो, काफी है ना, तो वो फोन ये टैबलेट या हो जाए बस। ये तो माँ बाप या दोस्त कोई पूछ भी ले कि भाई दो मिनट बात कर लो, टाइम नहीं है, क्योंकि वो मैसेज वहां लेट हो जाता है ना, है ना। तो सोशल मीडिया ही है। जब कुछ नहीं है का मतलब तुम्हारे अलावा तुम्हारे ना इंसान हो ना ये गजेट हो जिसको लेकर 24 घंटे घूमे रहते हो। कुछ तो अपने लिए टाइम निकालो, यही है जागरण। शिवरात्रि याद दिलाती है कभी सिर्फ अपने अलावा तुम्हारे पास कोई ना हो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। अपने बारे में मतलब जब कहते हैं अपने बारे में, डजंट मीन दैट कि मेरा कैसे फायदा होगा। बी स्मार्ट एनफ टू थिंक अबाउट व्हाट्स योर गेन एंड व्हाट्स योर लॉस। फायदा होने का मतलब हम सीधा जंप कर जाते हैं, पैसा मिलेगा क्या खाने पीने की या रिले, नहीं। फायदे का मतलब है कि तुम खुश कैसे रह सकते हो। ये तभी जब हम खुद के बारे में एनालाइज करो, मैं कौन हूं, क्या हूं। ये जो मेडिटेशन हम करते हैं क्यों करते हैं, उसकी सिंपल मीनिंग क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है, आजकल मेडिटेशन एक मेडिकल बेनिफिट के लिए हम यूज करते हैं, उसकी गोल अलग है, उसकी वे ऑफ डूइंग भी अलग है, कैसे करना अलग है। जहां मन आपका शांत हो और मन शांत होने से आपको जो एंजाइटी है, जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस किसी के भी कारण हो वो थोड़े कम हो जाए तो यू फील बेटर हेल्थ वाइज। खैर वो तो उसकी एक बोनस पॉइंट है और उसका एक बड़ा सुपरफिशियल जो बेनिफिट है। जो मेडिटेशन रियल मेडिटेशन है जहां हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रियलाइज करने की जो जर्निंग है उसी को कहते हैं। और उसी से हम उपवास करते हैं। उपवास मतलब जिसको आप आजकल फास्टिंग कहते हो। फास्टिंग का अर्थ ये खाना पीना छोड़ना नहीं। और जब भी देखो हमारे पुरुष लोग तो फास्टिंग करने वाले कोई मुश्किल से कोई मिलेगा। सारे जो तप जप जो है ये महिलाओं ने ठेका ले रखी अपनी। अब दोष ऐसा नहीं कि पुरुषों का है, उनको ऐसी तरह की ब्रेन वॉश किया गया है तो हर चीज में तुम ही भूखा रहोगे। और वो करते नहीं है, उनको समझाओ। कभी कभी कुछ अच्छे हस्बैंड होते हैं जो समझाते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा, ये करने से मेरी आयु नहीं बढ़ने वाला, मीठा बोल दो आयु बढ़ जाएगा 2 साल का, पर वो नहीं समझना। बहुत उपवास रखेंगे, शिवरात्रि की उपवास, इसकी उपवास, इसकी उपवास। और आपको पता है भारत में करोड़ों करोड़ों लेडीज की, महिलाओं की माइग्रेन की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अल्सर और पेट की प्रॉब्लम है, बार बार बेहोश होने की प्रॉब्लम है, केवल इसीलिए कि वो बहुत सारे समय नोइंगली अननोइंगली फास्टिंग करते हैं। नोइंगली तो साल में बहुत सारे जो खास करके जो बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, सो कॉल्ड धार्मिक, इसका एक्चुअली धर्म से बहुत कोई रिश्ता नहीं है। भगवान कोई इतना, आपको क्या लगता है जो भगवान है वो बहुत जालिम किस्म का आदमी है, मतलब टॉर्चर करा करा के खुश होता है ना, जो सैडिस्टिक होते हैं, जो माफिया लोग नहीं होते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं फिर हंसते हैं, असुरों की तरह हंसते हैं। मैं लगता है कोई भगवान है ऐसा ही है कि टॉर्चर करा करा के हंसता है, और मोस्ट ऑफ उपवास करने वालों को ऐसे ही लगता है कुछ, कि भाई जितना अपने आपको टॉर्चर करा भगवान खुश होता होगा और कुछ बड़ी बढ़िया करा देगा। असली उपवास क्या है तो बाद में बात करेंगे, पहले हम जो जिस तरह उपवास करते हैं उसके क्या साइड इफेक्ट होता है वो मैं आपको इन जनरल बताता हूं जो डॉक्यूमेंटेड है। करोड़ों महिलाएं भारत में माइग्रेशन लेकर से लेकर के अल्सर के 50 बीमारियां में है, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली साल में अनेक समय भूखे रहते हैं। भूखा रहने की 2 कारण है, नोइंगली मोस्ट आज हम मंडे का उपवास है, ये शुक्रवार का संतोषी का उपवास है, आज ये एकादशी का उपवास है, आज अमुक त्योहार का उपवास, ये तो हो गया नोइंगली उपवास है जो रिलीजियस उपवास है। उसके अलावा जो बहुत ज्यादा और थोड़े ज्यादा सती हो जाते हैं, मतलब जिनकी ट्रेडिशनल होते हैं, फिर पति के खाने के बाद खाऊंगी, बच्चों के खाने के बाद खाऊंगी, सास ससुर के खाने के बाद खाऊंगी, कभी कुछ कुछ बचता है कभी नहीं बचता है, बचता तो कभी कभी रोटी बचती है तो सब्जी नहीं, सब्जी बचती तो दाल नहीं, फिर वो न्यूट्रिशन की कमी होती है, पेट नहीं भरता है, खाली पेट रहता है। ये नोइंगली अननोइंगली उपवास करने वाले कारण भारत में करोड़ों महिलाएं दुखी हैं, अनदुखी रहते हैं, पर कभी कोई उनको बताने वाला नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, सिवाय तुम अपने बीमारियां बढ़ाते हो, टेंशन और बढ़ाते हो, और कुछ नहीं होगा। पति लोग भी मजे लेते हैं, कोई समझा दे, होते हैं आजकल तो काफी स्मार्ट पति हो गए हैं, समझाते हैं मत करो इसमें कुछ नहीं रखा, भक्ति करना अलग चीज है, भक्ति करना एक करो, हाँ उपवास रखना है, हेल्थ के कारण आपको उपवास रखना है कि हफ्ते में एक बार उपवास रहने से पेट खाली होता है, या आयुर्वेद में प्रेस्क्राइब किया जाता है उपवास रखो, उपवास मतलब फास्टिंग करो से इसकी मेडिकल बेनिफिट बहुत हैं, पर जब आप उसको प्रॉपर वे में करते हैं, ये जो निर्जला उपवास एकादशी के दिन बहुत करते हैं, पानी तक नहीं पियेंगे, अब आपके सपोज आपकी कोई बीमारी है कुछ है तो ये तो बहुत डेंजरियस है। अगर स्वास्थ्य के दृष्टि से किसी समझदारी के साथ उपवास करते हो वो तो फायदे की चीज है, पर इससे कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा, रिलीजियस बेनिफिट होगा, भगवान खुश होगा, ये अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट यही होता है कि आदमी एट द एंड ऑफ द डे बीमार होता है और चिड़चिड़ा होता है और गुस्सेल होता है और शक्की होता है, महिलाएं होती हैं इस तरह की चीजें। अब पुरुष वाले बड़े स्मार्ट है, ये करते नहीं है, कोई नहीं करता, बहुत कम पुरुष मिलेंगे, हाँ वो पुरुष करते हैं हमने देखा जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे वो इस्कॉन है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां ये 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 फोर्स किया जाता है कि आपको ये करने से ये मिलेगा तो वहां पुरुष कर लेते हैं, पर इन जनरल जो हिंदू सोसाइटी में बहुत कम ऐसा फेस्टिवल चीजें होती हैं जो पुरुष लोगों को उपवास करते हुए मिलेंगे। दे आर स्मार्ट, जो उनकी स्मार्टनेस नहीं है वो पत्नी को समझा नहीं पाते, इसे कुछ नहीं रखा है। तो रियल उपवास क्या है? वस का वास का अर्थ होता है रहना, आप कहते हैं ना वास निवास, वही अर्थ है, उप मतलब पास, उपवास का कंसेप्ट हमारे ऋषि मुनि शास्त्रों में दिया, उपवास का मतलब कुछ समय निकालो जहां तुम परमात्मा के उपवास करो, साथ बैठो। बोले साथ बैठने का क्या मतलब है, फिजिकली जाकर उसकी गोद में बैठेंगे? नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, तुम वहां कहां बैठोगे? परमात्मा कहां है जी? सब जगह है। तो तुम्हारे अंदर है जी? हाँ है। तुम्हारे मन में भी हाँ जी है। फिर कभी ऐसा फील हुआ कि तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारे साथ है? नहीं। क्यों? तुम तो 24 घंटे बाकी दुनिया के साथ हो ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हो। उपवास का मतलब थोड़ी देर के लिए एक्सटर्नल दुनिया से अपने आप को हटा दो। नहीं, कोई नहीं, ना घर है, ना किसी के बारे में दिमाग में कोई विचार नहीं। जो भी विचार होगा, मैं और मेरी प्रभु, उसमें डूब जाओ। जैसे कभी कभी जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या कोई नॉवेल, वैसे ही इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जब आप इतने खो जाते हैं कि खाना भूल जाते हैं, पीना भूल जाते हैं, अगर प्रभु की भक्ति में डूबे हुए आप वैसे ही भूल गए, दैट्स डिफरेंट, ये तो नेचुरल है। खाने खाने का भूल ही गए या इच्छा ही नहीं हुई, दैट्स डिफरेंट थिंग। वो उपवास है जहां आप परमात्मा को पाने की कोशिश में थोड़ी देर के लिए अपने आप को लगाते हैं। साल भर तो आप बिजी रहते हैं अपनी दुनियादारी में, दैट्स फाइन, वो तो जरूरी है, पर कुछ समय आप निकालते हैं, जिनको हमारे ऋषि मुनियों में अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स के रूप में रखा, जहां आप अपने आप को प्रभु की शरण में ले जाते हैं। ये जो समय है, इसमें कोई नहीं, मेरा ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे, ना दुनिया, कोई नहीं, मैं और मेरा प्रभु, बस हम दोनों की संबंध है। आप स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो, मेडिटेशन करते हो, जो भी करते हो दिल से करते हो और डूब के करते हो, मजे से करते हो, एंजॉय करते हो, वो समय तुम्हारा उपवास है। इसी का दूसरा नाम है उपासना। उपासना का अर्थ होता है भक्ति, डिवोशन। उपवास, भक्ति, उपासना सेम मीनिंग है। हाँ, करते करते आप भूल गए, पढ़ते पढ़ते टाइम ही नहीं मिला खाने को, काम करते करते लंच टाइम चला गया, आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह भक्ति करते करते आपकी डिनर टाइम, लंच टाइम चला गया, दैट्स फाइन। पर डिलिबरेटली खाना छोड़ना, और दिन भर क्या होता है, जिस दिन आप खाना छोड़ते हैं उपवास के नाम पर, आपके दिमाग में किसकी उपासना चल रही होती है? क्लोजनेस खाने की, कब शाम होगा खाऊं, अच्छा चांद उगा नहीं, नहीं होगा, अच्छा देखो जाकर बाहर या पेट में चूहे कूदने, मतलब हर सेकेंड, हर मिनट आपके किसकी उपासना हो रही है? प्रभु की, नहीं खाने की। पेट को सता रहे हो खाना ना खा के, और मन में उपासना कर रहे हो प्रभु की, नहीं खाने की, जिसको छोड़ रखा है। इससे अच्छा खाना खा लो, पेट भर लो, फिर बैठ जाओ भक्ति में, तो मन लग जाएगा। ऐसा नहीं कि खाना खा के ही करना जरूरी है, बिना खाए नहीं, कोई रूल नहीं है। आप जहां कंफर्टेबल हो वो करो, डिलिबरेटली खाना मत छोड़ो। ये खाना छोड़ना कोई उपवास नहीं है, ये ट्रेडिशन बना है तो ठीक है, दैट्स ओके। जब तुम्हारी सेंस पावर्स, जब तुम्हारे इंद्रियां बाहरी दुनिया से हट जाते हैं, जब तुम अपने सेंसेस को थोड़ी देर के लिए दुनिया से हटा देते हो, तुम्हारा उपवास हो गया। उपवास में करते क्या हो? खाना छोड़ देते हो। थोड़ा इसको एलाबोरेट कर लो, देखना भी छोड़ दो, सूंघना छोड़ दो, टीवी देखना छोड़ दो उस दिन, फोन करना छोड़ दो उस दिन, रिलेशनशिप को छोड़ दो उस दिन सारे सेंसेस की जो जो डिमांड है उनको सब छोड़ दो, तब तो ये प्रॉपर उपवास हो जाएगा। और यही रिकमेंडेड है, तब जा करके उपवास होता है। जब हवन करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, वो आहुति देने का ये तो एक्सटर्नल आहुति है, पर उसकी स्पिरिचुअल सेंस यही है। जैसे तुम हवन में कुछ आहुति देते हो, ऐसे लाइफ में भी कुछ चीजें सैक्रिफाइस करना सीखो, सरेंडर करना सीखो। दैट्स हाउ शिवरात्रि इज द फेस्टिवल ऑफ अवेकनिंग एंड विजिलेंस। जैसे गीता में ये बड़ा खूबसूरत श्लोक है, ये गीता का श्लोक है, सेकेंड चैप्टर में 69th में, यानी सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सानिशा पश्यतो मुने। यहाँ देखिए भूत शब्द भी आया जी दो बार, ये भूत वही, वो भूत प्रेत वाला नहीं, प्राणी मनुष्य। बाकी मनुष्य सभी भूतों के लिए, मतलब सभी मनुष्यों के लिए जो रात है उस समय जो संयमी व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला, उसके लिए वो दिन है। और बाकी दुनिया जिसमें जगा रहता है उस समय वो जो समझदार व्यक्ति, उसके लिए वो रात है। दिन रात का क्या मतलब है? गीता का ये, कृष्ण का ये उपदेश, दिन मतलब जगा हुआ होना, जिसमें जिसमें आप बिजी रहते हो। आम लोग सर्वभूत मतलब दूसरे लोग, आम लोग जिन चीजों में 24 घंटे लगे रहते हैं, जो समझदार लोग है उसके लिए वो रात है, वो यूजलेस है, उस समय वो अपने आप को हटा देता है। और स्मार्ट लोग का जहां, जिन स्मार्ट लोग के लिए जो दिन है, जिनमें जिसमें वो एंजॉय करते हैं, बाकी लोगों के लिए बोरिंग चीजें हैं। अपने आप को जानना आम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। सारी दुनिया के हिस्ट्री बताएंगे सबके बारे में, आप पूछ लो, 10 लोग बैठ जाएं, शुरू हो जाती है कितने सबकी बुराई हम कर सकते हैं, पर अपनी 10 बुराइयां बताओ हमें पता ही नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी तो बाद की बात है, अपनी कमियों का हमें पता नहीं है। अगर बहुत लोग हैं जो बड़े सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो तो उनको कमियां पूछो कहेंगे मेरे में सब कमी है, ये तो टू मच हो जाता है ना। सब कमी कैसे होगी भाई, नहीं मैं बुरा हूं, वो खैर वो एक अलग साइक है, या तो मैं बुरा नहीं हूं, और जो बीमार हो गया मेंटली वो पूरा बुरा हो जाता है। भाई सब में कुछ अच्छाई बुराई होती है, तुम्हें कुछ अपनी बुराइयों का अंदाज है, अच्छाइयों का अंदाज है, इतना ही नहीं पता। जो स्मार्ट होता है, बाकी लोगों का जिसमें इंटरेस्ट नहीं वो उसी में इंटरेस्ट रखता है, बाकी लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है स्मार्ट व्यक्ति उसमें कम इंटरेस्ट रखता है। आम लोग तो भेड़ चाल में चलते हैं, स्मार्ट लोग अपना लीडर बनता है। स्पिरिचुअलिटी में यही स्मार्टनेस है। दुनिया के बारे में सब जानते हैं, कभी अपने बारे में जान लो, यू विल बी ए स्मार्ट पर्सन, बेटर पर्सन। जो सब में, सब चीजों में, सब लोगों का जिन चीजों में इंटरेस्ट है, योगी ऋषि या तपस्वी या स्मार्ट पर्सन, उसमें उसके इंटरेस्ट नहीं। जो स्मार्ट की जिसमें इंटरेस्ट है, बाकी लोगों की उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो शिवरात्रि उस जगाने का नाम है जहां हम अपने आप के और थोड़ी जागे। मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि आज और एक भी फेस्टिवल है, कल मतलब ये तो शिवरात्रि जो कल आने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे, और जो कल बीत गया वो था महर्षि दयानंद जी का जन्मदिन, जो अभी बच्चों के प्रोग्राम आप देखने वाले थे, देख नहीं पाए थोड़ा बहुत। महर्षि दयानंद जिनका मूल नाम मूल शंकर था, वो फाल्गुन मास, मंथ फाल्गुन है ना, जो जनरली ये फरवरी मार्च में ही पड़ता है, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत है, तो उसमें कृष्ण पक्ष दशमी तिथि में पैदा हुए। आज के इस साल में जो 26 तारीख कल था, और स्वामी जी का जन्मदिन भी कल था, और शिवरात्रि के दिन जो उनकी इंसिडेंट हुई वो आपको पता है, पर थोड़ा सा बता देते हैं, ना बताएं तो फिर बात रह जाएगी। तो मूल शंकर जो उनका पुराना नाम है, बड़े अच्छे गुजरात में राजकोट में मोरबी गांव में पैदा हुए। उनके पिताजी एक राजा के टैक्स कलेक्टर थे, अच्छे रिच थे, बड़े रुतवा वाले थे, जिनके साथ दो चार पुलिस ऑफिसर, मतलब राजा के ऑफिसर्स भी रहा करते थे, ब्राह्मण परिवार के थे और शिव भक्त थे, शैव थे। जैसे शिवरात्रि के दिन ज्यादातर लोग मंदिर में जाते हैं, जागरण करते हैं, फिजिकल जागरण, मेंटल नहीं। तो वो भी जागरण के लिए सब परिवार गया। तो ये छोटे थे, 7-8 साल के। तो मूल शंकर ने पूछा, क्यों जागते हो? जैसे कि माँ बाप का नॉर्मली आंसर होता है, बिना जाने वैसे ही उठपटंग आंसर देते हैं। तो बच्चे जब ज्यादा पूछते हैं, कहते हैं चुप, तुझे कुछ नहीं पता। मेरा बच्चा नास्तिक हो गया, कुछ मानता ही नहीं। बच्चा नास्तिक नहीं हुआ है, आप पाखंडी हो गए। बच्चे को समझा नहीं पाते हो, और जब समझा नहीं पाते हो तो उसको बुरा भला कहते हो। समझाने की कोशिश तभी होगी जब आपको समझ में आए। जब आप ब्लाइंडली सब चीजें करते हो, आपको ही नहीं पता, जो आपका ही बच्चा आपसे पूछता है तो फिर आपको लगता है। फिर अपनी झेप छुपाने के लिए बच्चे को दोष दे देते हो, अपने साथियों को। पहले तो मेरा बेटा ना नास्तिक नहीं हुआ, आपके पाखंड व्यवहार देख करके उब चुका है, और कुछ नहीं। तो मूल शंकर ने पूछा कि ये क्या होता है? जैसे कि हर बच्चा पूछता है, जी मंदिर में जाते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, शिवरात्रि है, क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु मिलेंगे। तो वो बड़े, आजकल के बच्चे तो बड़े समझदार हैं, वो समझ जाते हैं माँ बाप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ, वो उसके हिसाब से चल जाते हैं। बच्चों को हिंदी क्लास भेजते हैं, हिंदी सीखो। बच्चों को पता है माँ बाप को हिंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर होता घर में भी बोल लेते, बस इसीलिए भेजते हैं कि कहीं कोई बताना दे कि हमारे तुम्हारे अपने बच्चों को हिंदी नहीं सिखाया। पर पूरी कोशिश करते हैं अंग्रेजी में ही बोलो, फिर कंप्लेन करेंगे जी स्कूल वालों ने हिंदी ठीक से नहीं सिखाया। अपना भी पार जी, हम तो पूरी कोशिश की, बच्चा नहीं सीखा, स्कूल जाने बच्चा जाने, हम तो पास हो गए जी। अब बच्चा जानता है माँ बाप की कोई इंटरेस्ट नहीं इंडियन लैंग्वेज बोलने सीखने में। ये मेरी माँ बाप दोनों आपस में भी बैठते हैं, अपनी भाषा में काम बोलते हैं, वो पकड़ लेता है कौन सी भाषा ठीक बोलना चाहिए। मैं कौन सी भाषा बोलूं, मेरे माँ बाप प्राउड फील करते हैं, वो उनके आंखों से समझ जाते हैं। बच्चे समझदार हैं, पर कुछ बच्चे थोड़े भोले होते हैं, माँ बाप की बात को लिटरेरी ले लेते हैं। तो मूल शंकर ने भी ले लिया जी, भगवान मिलेगा। अच्छा, तो जगकर बैठ गया मंदिर में जी। 9, 10, 10:30 बजा, 11 तक धीरे धीरे सब फैमिली मेंबर सोते गए, उठते गए। 12 बजे के बाद शिवरात्रि में पूजा होती है ना, शिव की पूजा। रात को आधी रात तक पूरी फैमिली सब सोए हुए हैं, 20-25 फैमिली मेंबर है, चाचा चाची, पापा मम्मी, भाई बहन, मौसा मौसी, सब एक साथ, सब घर की जो मंदिर है सब सो गए। ये बैठा है क्योंकि पहली बार उसने पूछा था, माँ बाप ने बताया रात को जागने पर भगवान मिलेंगे, उसको भगवान देखना, बेचारा इनोसेंट है, माँ बाप की बात को सच मान बैठा है। 12-1 बज गए, कुछ नहीं, सब सो गए, वो जगा हुआ है, भगवान अब निकले, अब निकले, अब निकले, कोई नहीं निकला। निकला तो चूहा निकला, चूहा खेलने लगा इधर उधर, रोज निकलता है, लगा इसमें चूहा निकला, सब ठीक है, छोटा बच्चा है। तो वो देखा वो शिवलिंग है, उसके ऊपर चढ़ गया, वो उसको हटाने की कोशिश करे, हटे नहीं। उसने बोला माँ बाप को बुलाऊं, तो वो सोए हुए हैं। तो सोचा कि छोटा बच्चा ना, सोचा कि हो सकता है भगवान आएंगे, उसको डांटेंगे, चूहा तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, हट। अब भगवान आ भी नहीं रहे, हटा भी नहीं रहे। चलो परिवार वालों ने जो प्रसाद रखा था, जो प्रसाद चढ़ाएंगे, तो उसमें भी वो चढ़ रहा है, मुंह मार रहा है। उसको बड़ी बेचैनी हुई, कुछ कर नहीं पाया, वेट करता रहा कि भगवान आएंगे आएंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपने फैमिली को उठाया 12-1 बजे, कर उसके बाद जो पूजा अर्चना हुई, जैसे कि रिचुअलिस्टिक वे में हम करते हैं, तो हुई बात, गई आई। उसने उसके बाद किसी से पूछा नहीं, उसके अंदर वह टीश रहा, तो कहां है वो शिव, वो तो मिले नहीं। उस दिन रात भर में जागा रहा। उसके बाद उसने सैकड़ों लोगों से अपने आसपास जो भी पंडित थे, पुजारी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जहां से भी उसको मिल सकता है, पूछा कि कैसे भगवान मिलता है। आंसर नहीं मिला तो घर छोड़ के अंधेरे एक दिन चुपचाप भाग गए ढूंढने के लिए। जब अगले दिन पिता को पता चला, अब उसके राजा के ऑफिसर है, उसने 7-8 पुलिस ऑफिसर जो भी उस समय राजा के ऑफिसर को भेजा, इसको ढूंढ के लाओ। एक बार तो पकड़ के लाए, घर में खुद पिटाई ठुकाई हुई, फिर दो तीन दिन के बाद फिर भाग गए। अब इस बार पकड़ में नहीं आए, वो दिन में छुपे रहते थे, रात को चला करते थे, इतना दूर की गुजरात पार करके राजस्थान पार कर जाए। उसके बाद 25 साल तक वो घूमते रहे घूमते रहे, हिमालय से लेकर के हिमालय की चोटियों से लेकर के नर्मदा के तट तक, जहां जहां साधु सन्यासी योगी ऋषि तपस्वी ज्ञानी विद्वान गुरुकुल आश्रम जो भी मिला, सब जगह गए, महीनों दो महीने रहा, सीखा। ऐसा नहीं कि वो लिखते हैं कि मैं हर जगह कुछ ना कुछ सीखा, कहीं योग सीखा, कहीं मेडिटेशन, जो भी जहां सबसे सीखा, और मैं अपनी साधना करता रहा। आखिर में मथुरा में यमुना के किनारे एक झोपड़ी में एक सन्यासी रहता था, और वो ब्लाइंड था, आंखें नहीं थी उनके, विरजानंद स्वामी विरजानंद। उनके बारे में सुना था कि हे तो अंधे पर बड़े ज्ञानी और पहुंचे हुए हैं। उनके पास पहुंचा, मैं समय हो गया, मैं कंक्लूड करता हूं। शाम का समय, दरवाजा खटखटावा, कुटिया सा था झोंपड़ी, दरवाजा खटखटा, बाहर से आवाज आया, कौन है तुम? बाहर से मूल शंकर ने बोला, यही तो जानने के लिए 20 साल खपा चुका हूं, पता होता तो क्यों दरवाजा खटखटाता। गुरु को लगा कोई ऑनेस्टली कुछ सीखने आया है, दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, बातचीत हुई, उन्होंने अपनी समस्या बताई, इतने सालों से जो पढ़ा लिखा सब किया। विरजानंद ने कहा, मैं एक शर्त पर पढ़ाऊंगा तुम्हें। वैसे वो व्याकरण के विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण के बड़े विद्वान थे, पर जो स्मार्टनेस की बात करते हैं ना, जो विजन की बात करते हैं, तो वो विजन वाले थे। वैसे एक्सटर्नल विजन तो नहीं था, अंदर बड़ा भयानक बहुत जबरदस्त विजन था। मैंने कहा, एक शर्त पर पढ़ाऊंगा, जब जो कुछ तुमने पढ़ा, ये जो कुछ बुक लेकर घूम रहे हो, सब यमुना में भाग कर आओ। मतलब है कि पूरे ओपन माइंड होकर के आओ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा बोलूंगा, हो सकता है तुम्हारे लिए रिवोल्यूशनरी हो। जब भी कोई लोग पहले ऐसी बात करता है ना, जो आपने पहले कभी सुना ना हो, तो आप झिलमिला जाते हैं, क्योंकि आपकी जो पहले की पढ़ी हुई चीजें आपको रोकता है उसको एक्सेप्ट करने में। ये सारे किताबें यमुना में बहाकर आओ, फिर ज्ञान दूंगा। विरजानंद जी की अंधे विरजानंद जी कुटिया में मूल शंकर दयानंद बन के निकला, और पूरे देश में जागरण पैदा किया, वो अवेयरनेस कि वो प्रभु, सच्चे प्रभु को पाने का रास्ता क्या है, ये तुम्हारे शास्त्रों में ही है, पर शास्त्रों को ठीक से समझो, पाखंड और रियल रिलीजियस एक्टिविटीज में फर्क को समझो, ब्लाइंड बिलीव और रैशनल बिलीव में फर्क करना सीखो, शास्त्र और कुशास्त्र में फर्क करना सीखो। प्रचार में लगे पूरी जिंदगी, उन्होंने हिंदू धर्म की, भारत की, समाज की, सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई रिलीजियस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस लाने के लिए, इवन गुलाम देश में, गुलाम भारत था तब, ब्रिटिश कॉलोनी, वो उसके लिए भी उन्होंने जो स्वराज्य का आंदोलन का जो नारा दिया, तो प्री गांधी जो आजादी का मूवमेंट का आप हिस्ट्री देखें, मोस्ट ऑफ जो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में जितने भी रिवोल्यूशनरी पैदा हुए, वो मोस्ट ऑफ देम दयानंद जी से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे। वो शहीद होने वाले राजगुरु हकीकत राय से अत्तावला खान का, क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हैं, क्या कहते हैं, अस्फाकुला से लेकर के लाजपत राय से लेकर के भगत सिंह से लेकर, आपको सैकड़ों मिलेंगे उस समय, जो दयानंद या उसके उनके बाद जो उनके विचारों से प्रभावित होकर के आजादी की लड़ाई में कूदे। तो ऐसा नहीं कि आर्य समाज या दयानंद जी का प्रभाव सिर्फ रिलीजियस रिवोल्यूशन या स्पिरिचुअलिटी में था, इवन जो नेशनलिज्म राष्ट्रीय भक्ति को भी जगाने में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो ऐसे स्वामी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत नमन है। शिवरात्रि आपके लिए भी शिव कल्याण लाए, रियल शिव को ढूंढे, रियल शिव के लिए रियल उपासना करें तो आपका भी कल्याण होगा और आपके बच्चों का भी, हम सबका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।